नमस्कार भारत, 13 जनवरी दिन रविवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। उत्तर प्रदेश में साइकिल पर सवार होते ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बीजेपी परिवार।
इन दोनों गुरु व चेले की नींद उड़ाने वाली अति महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया गठबंधन पर पलटवार।
ये सारे मिलकर अब देश में एक मजबूर सरकार बनाने में जुट गए हैं।
बिहार के गया में नाबालिग लड़की की मौत के मामले में क्यों उठ रहे हैं पुलिस की जांच पर सवाल।
ठस का जो गए कभी नहीं आए, सब कुछ बोलना पड़ा मजबूरन डर के मारे।
और खास रिपोर्ट, भारत प्रशासित कश्मीर में आईएस की मौजूदगी के दावे में कितना दम।
हकीकत यह है कि कोई बहुत बड़ा इनका ये ढांचा नहीं है यहाँ पर।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार विकास त्रिवेदी से। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने मंगलवार को ब्रेग्जिट के मुद्दे पर समर्थन को लेकर सांसदों को आगाह किया है। उन्होंने कहा कि अगर समझौते के तहत ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर नहीं निकला तो ये ब्रितानी लोकतंत्र में यकीन तोड़ने जैसा होगा जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। एक अखबार में लिखे लेख में मे ने सांसदों से साथ देने की बात कही है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामापूसा ने देश में बलात्कार और यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ पुरुषों से एकजुट होने की अपील की है। डर्बन के एक स्टेडियम में अपने चुनावी घोषणा पत्र को जारी करते हुए हजारों समर्थकों के बीच सिरिल ने पुरुषों से ऐसी घटनाओं के खिलाफ खड़े होने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि लगातार महिलाओं का बलात्कार किया जा रहा है और उनकी हत्या की जा रही है। अब वक्त आ गया है कि देश इन घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए।
Gender-based violence has become a national crisis.
लिंग के आधार पर बढ़ती हिंसा की घटनाएं देश के सामने संकट बन गया है। हमें औरतों के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए ज्यादा कोशिशें करने की जरूरत है। ये थे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के शब्द। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी में उभरते सितारे के तौर पर देखे जाने वाले जूलियन कास्त्रो अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारी के लिए दावेदारी पेश करेंगे। 44 साल के जूलियन टेक्सास में सेंट एंटोनियो को मेयर रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने ओबामा प्रशासन में भी अहम मंत्रालय संभाला। इससे पहले अमरीकी कांग्रेस में जाने वाली पहली हिंदू सांसद तुलसी गबार्ड भी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए दावेदारी पेश करने का ऐलान कर चुकी हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फ्रांस की सरकार का कहना है कि शनिवार को हुए प्रदर्शनों में करीब 84,000 लोगों ने हिस्सा लिया। येलो वेस्ट आंदोलन यानी पीली जैकेट पहनकर किए जाने वाले प्रदर्शन में बीते हफ्ते प्रदर्शनकारियों की संख्या 50,000 थी। देश के आंतरिक मंत्री क्रिस्टोफ कास्टोनर का कहना है कि ज्यादातर जगहों पर प्रदर्शन शांतिपूर्वक हुए हैं। इससे पहले हुए कुछ प्रदर्शनों में पुलिस के साथ झड़पें हुई थी। ये प्रदर्शन पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों में हिस्सा लेने वाले लोग पीले रंग की वो जैकेट पहनते हैं जिन्हें सुरक्षा के लिहाज से पहना जाता है। कांगो में राष्ट्रपति पद के चुनावों में विपक्ष के उम्मीदवार मार्टिन फायुलू ने बीबीसी से कहा है कि चुनावों में धांधली हुई है और वो चुनावी नतीजों के खिलाफ अदालत का रुख करेंगे। मार्टिन ने कहा कि चुनावों में गड़बड़ हुई है और वो दोबारा वोटों की गिनती चाहते हैं। चुनाव आयोग ने फेलिक्स तेसेक्स केदी को चुनावों में विजयी घोषित किया है। चुनाव आयोग का कहना है कि राष्ट्रपति कबीला का समर्थन करने वाली राजनीतिक पार्टियों ने संसद में बहुमत के लिए जरूरी सीटें जीत ली हैं। फायुलू का कहना है कि फेलिक्स ने कबीला के साथ सत्ता को लेकर समझौता किया है। कबीला भले ही सत्ता में ना हो लेकिन फेलिक्स के साथ जो समझौता हुआ है उसके तहत बॉस की भूमिका में कबीला ही रहेंगे। वो ऐसे हैं जिन्हें सब कुछ मिला है, सेना, वित्त संबंधी नियंत्रण कबीला के पास ही रहेगा। इस हिसाब से असली विजेता वो ही है। ये थे फायुलू के शब्द। सऊदी अरब की 18 साल की युवती रहव मोहम्मद अल कुनून कनाडा पहुंच गई हैं। इस्लाम और अपने परिवार को छोड़ने की वजह से चर्चा में आई रहफ का कनाडा की विदेश मंत्री ने स्वागत किया। कनाडा ने रहफ को शरण दी है। विदेश मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने रहफ को बहादुर बताया। कनाडा पहुंचने के बाद रहफ ने किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इससे पहले रहफ को बैंकॉक एयरपोर्ट पर कुछ अधिकारियों ने रोक लिया था। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत और मैं हूं वात्सल्य राय। आप ये कार्यक्रम bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं लाइव। उत्तर भारत में मौसम सर्द है, लेकिन राजनीतिक जमीन तपने लगी है। आम चुनाव की उल्टी गिनती खत्म होने को है और चुनावी चक्रव्यूह में उतरने के पहले सभी दल अपनी रणनीति तय कर रहे हैं। सियासी समीकरण भी बदल रहे हैं। ऐसा ही एक समीकरण कल सामने आया। करीब 25 बरस तक राजनीतिक दुश्मनी निभाने के बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठजोड़ का ऐलान कर दिया। इस गठजोड़ की पहली तस्वीर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पेश की और दावा किया कि इस गठजोड़ से बीजेपी की नींदें उड़ जाएंगी।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तथा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह की, अर्थात इन दोनों गुरु व चेले की नींद उड़ाने वाली अति महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है।
लखनऊ में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती के साथ मौजूद रहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के निशाने पर भी भारतीय जनता पार्टी थी।
भाजपा के अहंकार का विनाश करने के लिए बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का मिलना बहुत जरूरी था। आपको याद होगा, मैंने इसीलिए कहा था कि बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करने के लिए अगर हमें दो कदम पीछे भी हटना पड़ेगा तब भी हम गठबंधन करेंगे और भाजपा के अहंकार को तोड़ेंगे।
दोनों पार्टियों ने उत्तर प्रदेश में 38-38 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इन दोनों पार्टियों ने जो सवाल उठाए उनका जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में इस गठजोड़ पर क्या कहा वो भी सुनिए।
ये सारे मिलकर अब देश में एक मजबूर सरकार बनाने में जुट गए। वो नहीं चाहते कि देश में मजबूत सरकार बने और उनकी दुकान फिर बंद हो जाए। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि भ्रष्टाचार कर सके। इस देश का नागरिक मजबूत सरकार चाहता है ताकि व्यवस्था में भ्रष्टाचार को खत्म कर सके।
एसपी और बीएसपी के गठजोड़ में कांग्रेस को जगह नहीं मिली है। हालांकि दोनों पार्टियों ने कांग्रेस के लिए दो सीटें छोड़ी हैं। गठजोड़ से कांग्रेस को अलग रखने का सवाल दुबई के दौरे पर गए पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी से भी हुआ। सुनिए उनका जवाब।
यूपी में गठबंधन हुआ है, उन्होंने निर्णय लिया है, उनकी चॉइस है, मगर अब हमें भी यूपी में एक्शन लेना है। हमें भी चुनाव स्ट्रेंथ से लड़ना है, एग्रेशन से लड़ना है, और वो हम करेंगे और नतीजा लोगों को सरप्राइज करेगा।
राहुल गांधी ने यह दावा भी किया कि कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी और बीएसपी भी बीजेपी को रोकने का काम करेंगी। लेकिन बीजेपी भी विपक्ष की चुनौती से अनजान नहीं है। पार्टी आम चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। दिल्ली में हुए दो दिन के राष्ट्रीय अधिवेशन में नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस दिशा में निर्देश भी दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक लंबा भाषण दिया इस अधिवेशन में। इस अधिवेशन में बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली भी मौजूद थे। हमारे साथी आदर्श राठौर ने उनसे पूछा कि क्या अधिवेशन में मोदी के तेवर कुछ बदले हुए थे।
नरेंद्र मोदी के भाषण में मतलब मैं ये कहूँगा कि शुरू के आधे घंटे जो है उन्होंने बोला तो उसमें किसी तरह का जो वो दिखता है वो उनका एक पुराना सा ढर्रा जो बन गया है कि कांग्रेस पर अटैक या कांग्रेस को हर तरह का इल्ज़ाम देना, वैसा नहीं दिखा। पहले तो ये है कि उन्होंने आडवाणी का बड़ा आदर से नाम लिया और उसके बाद मुरली मनोहर जोशी को विद्वान कहा और राजनीति दोनों का संगम उनको बताया, तो ये थोड़ी अलग सी बात रही। क्योंकि पिछले दिनों ये जो वृद्ध नेता थे, जो बुज़ुर्ग नेता थे, वो बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए दिख रहे थे। लेकिन फिर नरेंद्र मोदी अपने पुराने ढर्रे पर आ गए। अपनी सरकार की जो उन्होंने उपलब्धियां हैं वो तो गिनाई ही, और बार बार कांग्रेस पर इल्ज़ाम देते रहे कि कांग्रेस जो है वो सारे भ्रष्टाचार के लिए जो है वो जिम्मेदार है, इस तरह की बातें जो पहले भी कहते रहे हैं वो।
साथियों, भाजपा सरकार के इस कार्यकाल ने ये साबित किया है कि देश बदल सकता है और सामान्य नागरिक के हित में बदल सकता है। भाजपा के सरकार के कार्यकाल ने ये साबित किया है कि देश में सरकार बिना भ्रष्टाचार के भी चलाई जा सकती है।
और साथ साथ ये भी कहते रहे कि जब हमको जब सरकार मिली तो उस समय ये था कि कांग्रेस ने जो गलतियां की थी उसका भुगतान हम भुगत रहे हैं। वो इस मायने में कि उन्होंने कहा कि दो तरह से जो है वो कर्ज मिलते थे बैंकों के द्वारा, एक तो बैंक खुद देते थे और दूसरा जो है वो कांग्रेस के द्वारा होता था जब फोन होता था, और उसी का जो है खमियाजा हम भुगत रहे हैं, उन्होंने ये कहा।
60 साल में 18 लाख करोड़ रुपया और कांग्रेस शासन के आखिरी 6 साल में 34 लाख करोड़ रुपया। अब मैं आपको बताता हूं ये कैसे किया जाता था। साथियों, उस समय देश में लोन लेने के दो तरीके होते थे। एक तरीका था कॉमन प्रोसेस जिससे लोन मिलता था, और दूसरा तरीका था जिसे लोन मिलता था उसे कहते थे कांग्रेस प्रोसेस।
जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो भी भाषण हाल फिलहाल हुए हैं, खासकर 3 राज्यों के जो नतीजे आए विधानसभा चुनावों के, राजनीतिक विश्लेषकों का यह कहना है कि उनमें कहीं ना कहीं कुछ बेचैनी सी दिखती है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का ये जो आयोजन रहा इसमें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में कुछ इस तरह की बेचैनी नजर आई?
अगर आप गौर से देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं जो पहले से बदली बदली है, और वो कहते हैं कि बदले बदले मेरे सरकार नज़र आते हैं। तो मोदी साहब और शाह का जो बॉडी लैंग्वेज उसको कहते हैं वो बदला हुआ था। आप अगर पोस्टर देखें तो उसमें नितिन गडकरी से लेकर जेटली, राजनाथ सिंह या सुषमा स्वराज जो कि एंटी मोदी खेमे के माने जाते हैं, उन सब की तस्वीरों के बैनर लगे हुए हैं। कह सकते हैं कि कुछ पुराने रिश्तों पर नई पॉलिश चढ़ाने की जो कोशिश है वो। साथ साथ जो मोदी साहब ने जो आज एक बात कही जो मुझे बहुत खास लगी कि किसी बात का जिक्र करते उन्होंने कहा कि मोदी भी जो है इसी संगठन की पैदाइश है। पता नहीं ये उनका इशारा आरएसएस की ओर है जिसके बारे में बार बार कहा जा रहा है कि वो मोदी के अलावा किसी दूसरे चेहरे को भी तैयार रख रही है, जिसमें नितिन गडकरी का नाम बार बार आ रहा है, और दूसरा ये कि वो पार्टी के दूसरे नेताओं की तरफ भी जो अपनी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ इशारा है, राजनाथ या बाकी लोगों की तरफ, जो कि कहा जा रहा है कि मोदी और शाह की जोड़ी इतनी हावी थी पूरी पार्टी पर कि इसको लेकर नाराज़गी थी। तो 3 राज्यों में जो हार हुई है उसके बाद ये बॉडी लैंग्वेज तो चेंज हुई है।
ये थे बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली और उनसे बात कर रहे थे आदर्श राठौर। कांग्रेस उत्तर प्रदेश के लिए अपनी रणनीति का खाका आज पेश कर सकती है, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या सपा और बसपा के गठबंधन में कांग्रेस के न होने से विपक्ष की चुनौती कमजोर होगी। हमारे साथी आदर्श राठौर ने यही सवाल किया वरिष्ठ पत्रकार सुनीता एरन से।
एसपी बीएसपी ने अभी हाल के जो चुनाव हुए थे 3 स्टेट्स में वहाँ पे कांग्रेस को समर्थन दिया, वहाँ पे भी अलायंस नहीं हो पाया था बट उन लोगों ने समर्थन दिया। वहाँ पे कांग्रेस ज़्यादा स्ट्रांग है, जबकि यूपी में समाजवादी पार्टी और मायावती जी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ये बड़ा क्लियर था कि वो चाहते हैं या तो नेशनल अलायंस हो या कोई, उससे कोई फ़ायदा एसपी बीएसपी को नहीं होता कांग्रेस के साथ अलायंस करने पर। तो इसलिए मुझे लगता है कि दे हैव डिसाइडेड कि हम लोग अलग ही जाएंगे, क्योंकि 20 सीटें देना मुश्किल है और दूसरा कोई बहुत ज्यादा उससे एडवांटेज अलायंस को रहा है वो वाली बात थी
जी। तो ये
अलायंस तो हो ही सकता है ना आफ्टर द इलेक्शंस, मेन बात तो आफ्टर द इलेक्शंस ज्यादा सीटें जीत लेंगे तो उसके बाद इलेक्शन के बाद अगर कोई बनता है तो तब तो अलायंस हो ही सकता है, डिपेंडिंग ऑन कौन कितनी सीट्स लेकर आते हैं
जी। लेकिन अगर कांग्रेस भी अपने सभी सीटों पर जैसा कि अगर उम्मीदवार उतारती है तो क्या एसपी और बीएसपी को तो नुकसान होगा उस स्थिति में?
आपका लास्ट टाइम का आपके याद होगा कि 2 सीटें जीते थे और आई थिंक 7-8% ऐसे कुछ वोट था, तो 6% और फिर 2017 में भी कम हो गया था। तो कांग्रेस की यहाँ पे हेल्थ बहुत अच्छी नहीं रही है, तो 1989 के बाद से ही वो डिक्लाइन पे है। तो अगर वो लड़ते हैं तो खाली एक जो क्लैश होता है वो मुस्लिम वोट का होता है, जो मायावती जी का वोट है या अखिलेश का है वो कांग्रेस में नहीं जाता है। तो उस केस में मुझे लगता है कि जहाँ पे कांग्रेस विन करेगी वहाँ तो मुस्लिम जाएंगे उनके साथ, बट अदरवाइज वो एसपी बीएसपी के साथ ही रहेंगे।
आरएलडी जो कि ज्यादा सीटें चाह रही थी, क्या ऐसा है कि दोनों ने आपस में तो सीटों को लेकर स्पष्ट समझौता कर लिया लेकिन आरएलडी को नजरअंदाज कर दिया?
नहीं, आरएलडी के लिए 2 सीट्स रखी है ना, उन्होंने क्या है दो, अभी मुझे लगता है कि अखिलेश अपने कोठे में से एक दो सीट्स देंगे, जैसे निषाद है गोरखपुर के, उनको सीट देंगे। अगर राजभर जो ईस्ट यूपी के हैं, बहुजन समता पार्टी क्या है, उसने भी अगर चाहा तो एक सीट उसको भी दे सकते हैं। और आरएलडी को दो तो उन्होंने ऑलरेडी ऑफर करी हुई है, जरूरत पड़ेगी तो एक और दे देंगे।
ये थी वरिष्ठ पत्रकार सुनीता आयरन। और इस बीच हमारे साथी विकास त्रिवेदी बड़ी दिलचस्पी के साथ अखबारों के पन्ने पलट रहे हैं। उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ किस अंदाज में इन खबरों को अखबारों ने समेटा है।
वात्सल्य जी, इंडियन एक्सप्रेस अखबार में उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा को जो साथ आने की खबर है, ये सभी अखबारों में है। इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसको छापा है और जो उसकी हेडिंग लगाई है वो लगाई है यूपी ओपन्स अप। तो यूपी और यूपी की स्पेलिंग रिपीट हो रही है। और जो तस्वीर लगाई है उसमें अखिलेश यादव लाल टोपी के साथ दिख रहे हैं और सामने से फूल स्वीकार करते हुए मायावती मुस्कुरा रही हैं। इसी के ठीक बराबर में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को अखबार ने छापा है। खड़गे ने कहा है कि सीबीआई मामले में आलोक वर्मा के आरोपों की सीबीसी की तरफ से जांच करने वाली कमेटी को जो देख रहे थे जस्टिस जी पटनायक, उनकी रिपोर्ट को सरकार ने साझा नहीं किया है। हिंदुस्तान टाइम्स के पहले पन्ने की खबर मोदी का बयान है जो उन्होंने कहा था, इसको हमने कवर किया है। इसके अलावा कल बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई थी जिसको प्रयोग किया है, सभी अखबारों में वो प्रमुख खबर है। हिंदुस्तान टाइम्स की दूसरी खबर है कि आईएएस टॉपर शाह फैसल के बाद अब जम्मू कश्मीर के कई दूसरे अधिकारी भी राजनीति में आ सकते हैं। वहाँ एक जज है, उन्होंने इस्तीफा भेजा, तो ऐसे माना जा रहा है कि अब कई और अधिकारी भी हैं जो इस्तीफा भेज सकते हैं और राजनीति में
जो
आ सकते
अभी
हैं।
तक प्रशासनिक सेवाओं में है या न्यायिक सेवाओं में है, ऐसे लोग राजनीति का रुख कर सकते
जी। संडे टाइम्स की खबर है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर संसद में पास हुए कानून को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी है, यानी अब ये बिल औपचारिक तौर पर कानून बन गया है। अमर उजाला अखबार की खबर है कि दिल्ली चौथा सबसे प्रदूषित शहर है। इसके अलावा जनसत्ता की खबर है कि शराब कारोबारी विजय माल्या के शेयरों को ईडी नीलामी करेगा उसकी। इसके अलावा हिंदुस्तान जो हिंदी अखबार है उसमें राहुल गांधी के बयान को जगह दी है। राहुल ने कहा है कि यूपी में पूरी क्षमता से लड़ेंगे।
जी बहुत शुक्रिया विकास अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब पाकिस्तान के उर्दू अखबारों की साप्ताहिक समीक्षा भी आपको सुना देते हैं, जिसे तैयार किया है इकबाल अहमद ने और पेश कर रहे हैं विकास त्रिवेदी।
पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों में इस हफ्ते चीनी दूतावास पर हुए हमले, भारत पाक सिंधु जल संधि से जुड़ी खबरें सुर्खियों में रहीं। एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक कराची के पुलिस प्रमुख डॉक्टर अमीर शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पिछले महीने कराची स्थित चीनी वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ था। पुलिस प्रमुख के अनुसार इस मामले में उन्हें अहम सुराग मिले हैं। एक तरफ पाकिस्तान ने जहां भारत पर चरमपंथी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है, वहीं दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान के एक साथ आने की भी खबरें हैं। पाकिस्तान के अखबार नवा ए वक्त के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच जल संकट को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अखबार के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल समझौते से जुड़े विवाद को समाप्त करने के लिए भारत ने बहुत ही सकारात्मक कदम उठाया है। चिनाब नदी पर बांध बनाने के लिए इलाके के सर्वेक्षण के लिए पाकिस्तान ने भारत से इजाजत मांगी थी, जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया है। पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्री के हवाले से अखबार लिखता है कि 3 सदस्यीय पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल 27 जनवरी को भारत का दौरा करेगा। सऊदी अरब पाकिस्तान में $10 अरब का निवेश करेगा। अखबार दुनिया के अनुसार सऊदी अरब पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर तेल रिफाइनरी लगाएगा, जिसकी लागत करीब $10 अरब है। अखबार के अनुसार सऊदी अरब के तेल मंत्री पाकिस्तान के दौरे पर हैं और रविवार को इस संबंध में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच समझौता हो जाएगा। अखबार आगे लिखता है कि सऊदी अरब अगले 3 साल में $5 अरब का और निवेश करेगा। पाकिस्तान आर्थिक मंदी से गुजर रहा है और वो अपने पुराने दोस्तों से मदद की गुहार लगा रहा है। इस गुहार में तेल उत्पादक अरब देशों से उधार पर तेल देने की अपील भी शामिल है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से इस तरह की अपील की है।
उर्दू अखबारों की समीक्षा सुना रहे थे विकास त्रिवेदी।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
अगली खबर बिहार के गया से, जहां बीते दिनों मानपुर ब्लॉक में एक नाबालिग लड़की का शव मिला। पुलिस इसे ऑनर किलिंग का मामला बता रही है, लेकिन स्थानीय लोग पुलिस की जांच पर सवाल उठा रहे हैं। सुनिए सीटू तिवारी की रिपोर्ट।
गया के मानपुर ब्लॉक के पटवा टोली की सकरी गलियों में मातमी सन्नाटा पसरा है। 12,000 पावर लूम और 500 हैंडलूम वाले इस इलाके में जहां 45,000 लोग कपड़ा बुनने के काम से जुड़े हैं, वहां कपड़ा बुनने की कोई आवाज़ बीती 9 जनवरी से सुनाई नहीं दी। औरतें घर में दुबकी हैं, पुरुष धूप सेकते हुए अखबार में नजर गड़ाए हैं, अनमने अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर डरे हुए।
इस
रिहाइश से कुछ दूर दुर्गा स्थान नाम की जगह पर तकरीबन 600 लोग जुटे हैं। वो सब अपने नेता और मानपुर वस्त्र उद्योग बुनकर समिति के अध्यक्ष प्रेम नारायण पटवा को सुन रहे हैं। प्रेम नारायण पटवा बीबीसी से कहते हैं,
सीबीआई से जांच की मांग करते हैं, यानी उच्च स्तरीय जांच की जाए और दोषी है उसको सजा मिले, लेकिन निर्दोष को मना फंसाया जाए। हम लोगों ने अपने तरफ से पता लगा करके कुछ अपराधियों का नाम भी उन्हें बताया था, लेकिन उसकी और प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया।
पटवा टोली की बेटी यानी 16 साल की एक लड़की जो 28 दिसंबर की शाम 6 बजे अपने घर से निकली लेकिन वापस नहीं लौटी। 7x5 के एक बेहद छोटे से कमरे में रहने वाले उसके बुनकर मजदूर परिवार ने उसको बहुत ढूंढा। 4 जनवरी को स्थानीय थाने बुनियादगंज में FIR हुई, लेकिन 6 जनवरी को गया खिजरासराय रोड के बक्सरिया टोला के पास उसका शव मिला, जिसके बाद 8 जनवरी से ही मानपुर बुनकर समिति ने विरोध प्रदर्शन शुरू किए जो अभी भी चल रहे हैं। 10 जनवरी को गया SSP राजीव मिश्र इसे ऑनर किलिंग का मामला बताया।
उसके बाद 6 तारीख को उसकी डेड बॉडी मिली, वो देखने से 5 से 6 दिन पुरानी लग रही है।
लड़की की लाश बेहद क्षत विक्षत हालत में मिली थी। घर वालों ने लड़की की पहचान पांव में पहनी पायल और चप्पल के आधार पर की। स्थानीय लोगों का कहना है कि लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है और पुलिस जो ऑनर किलिंग की थ्योरी बता रही है वो गलत है। पुलिस का कहना है कि लड़की 31 दिसंबर की शाम घर आई और उसी रात गायब हो गई, लेकिन लड़की की बड़ी बहन का कहना है कि पुलिस ने उसे डरा धमका कर ये बयान दिलवाया है,
लेकिन 28 को जो गई उसे कभी नहीं आई है, तब कुछ बोलना पड़ा मजबूरन डर के मारे। टेंट लगाने के लिए मशीन मंगवाने लगा था, बांधने के लिए रस्सी मांग रहे थे।
दूसरा सवाल जो मानपुर के लोग उठा रहे हैं वो पीड़ित के पिता के दोस्त लीला पटवा के बारे में है, जिसको पुलिस ने मुख्य आरोपी बनाया है। स्थानीय लोग बताते हैं कि 31 दिसंबर की रात लीला पटवा बस बुक करके 50 लोगों के साथ भीम बांध घूमने गया था। उसके साथ गए तालकेश्वर प्रसाद कहते हैं,
वहाँ तो मेरे साथ है बस पर, 9:15 बस खोला, उसके बाद रिटर्निंग को वहाँ पहुँचे यहाँ पर करीब 12:30 रात में।
वही स्थानीय पत्रकार विश्वनाथ और वार्ड पार्षद प्रतिनिधि गोपाल पटवा भी पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठा रहे हैं।
पुलिस कहती है कि 28 तारीख की इसको अगवा हुआ तो 31 तारीख की घर आई, तो वो एक तरफ कहती है कि वह प्रेमी के साथ गई थी और डॉक्टर का स्टेटमेंट भी आया है जिसमें कहते हैं कि दुष्कर्म नहीं हुआ, तो प्रेमी क्यों ले गया? ठीक है, माँ पिता ने ही हत्या की है, तो हत्या में प्रयोग किए गया हथियार कहाँ है, कहाँ हत्या किया गया?
वही इस मामले की तफ्तीश कर रहे वजीरगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अभिजीत सिंह ने BBC को बताया,
पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी हम लोग को नहीं मिली है, लोगों को जेल भेजा गया है, पूछताछ के लिए कुछ लोगों को लाया जा रहा है, पूछताछ किया जा रहा है।
शुक्रवार शाम के 4 बज चुके हैं और लड़की की मां, जिन्हें स्थानीय थाने ने 9 जनवरी की शाम से पूछताछ के लिए रखा हुआ था, वो 2 दिन बाद घर लौट रही हैं। उनके आंसू सूख चुके हैं, वो मुझसे कहती हैं,
हम तो ही चाहते हैं हमको बेटे की इंसाफ खाई मिल जाएगी, हमको जीवा स्थिर हो जाएगा, आत्मा की शांति हो जाएगा।
बिहार में महिलाओं के प्रति हिंसा नए नए रूपों में सामने आ रही है। 2005 में सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर तमाम योजनाएं चलाईं, लेकिन उनके प्रति बढ़ती हिंसा को रोकने में असफल रही। सिर्फ दुष्कर्म का ही आंकड़ा देखें तो बिहार पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक 2005 में 973 मामले दुष्कर्म के दर्ज हुए, वहीं साल 2018 में ये 1304 थे। मानपुर पटवा टोली से BBC के लिए सीटू तिवारी।
और अब एक खास रिपोर्ट। भारत प्रशासित कश्मीर में बीते कुछ दिनों के दौरान इस्लामिक स्टेट के झंडे लहराने की घटनाएं बढ़ी हैं। ऐसे में यह सवाल भी उठ रहा है, क्या घाटी में IS पांव पसार रहा है? इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की है माजिद जहांगीर ने।
दौलतुल इस्लाम, दौलतुल इस्लाम, दौलतुल इस्लाम,
इस्लामिक स्टेट या ISIS के समर्थन में ये नारे बीते 28 दिसंबर को श्रीनगर की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में जुमा नमाज के बाद उस समय लगाए गए थे जब मस्जिद के अंदर कुछ नकाबपोश नौजवान दाखिल हो गए थे। ये नकाबपोश नौजवान मस्जिद में दाखिल होने के बाद मस्जिद के मिंबर या ज्ञान ठेठ पर चढ़ गए थे और IS यानी इस्लामिक स्टेट का झंडा लहराते हुए नारेबाजी की थी। इस घटना को अलगावादियों से लेकर आम दायरे की राजनीतिक पार्टियों और चरमपंथ गुटों ने निंदनीय बताया। ऐसा नहीं है कि IS के ये काले झंडे पहली बार कश्मीर में लहराए गए हों। बीते 3 वर्षों से श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके और कश्मीर के दूसरे हिस्सों में भी ये झंडे लहराए जाते हैं। कश्मीर में कई वर्ग के लोग कश्मीर में IS की मौजूदगी या इस संगठन की विचारधारा का कश्मीरी युवाओं पर असर के हवाले से अलग अलग राय रखते हैं। विश्लेषक और पत्रकार हारून ऋषि कहते हैं कि जिस तरह से कहा और देखा जा रहा है ऐसा नहीं है,
क्योंकि हमें उसका अंदाजा हमें तब लग जाता जब यहाँ इस तरह की कार्रवाइयाँ हो जाती, लेकिन हकीकत यह है कि कोई बहुत बड़ा इनका ये ढांचा नहीं है यहाँ पे।
वर्ष 2017 में श्रीनगर के 2 चरमपंथी जो सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए थे, दोनों के शव IS के झंडों में लिपटे गए थे। हालांकि कश्मीर के समाज शास्त्रों का मानना है कि जिस तरह कश्मीर का युवा IS का झंडा लहरा रहा है वो सबके लिए एक गंभीर मामला है। कश्मीर यूनिवर्सिटी में समाज शास्त्र के प्रोफेसर पीरजादा अमीन कहते हैं,
तो जहां तक अब IS का फ्लैग होस्टिंग का ताल्लुक है, मैं जरूर इस बात को एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि ये एक वरीसम बात है हमारे बच्चों के लिए, हमारे यूथ के लिए, क्योंकि बच्चे बहरहाल दे आर वल्नरेबल।
पत्रकार और विश्लेषक अहमद अली फयाज कहते हैं कि जो लोग इन झंडों को लहराते हैं वो इस्लामिक स्टेट से जुड़े हुए लोग नहीं होते हैं, बल्कि ये एक विचारधारा है जिसके असर में झंडे लहराने वाले आ जाते हैं। कश्मीर में IS की मौजूदगी या कट्टरपंथ विचारधारा के असर को सिरे से खारिज करते हुए पूर्व पुलिस DIG और लेखक अली मोहम्मद वटाली कहते हैं कि IS के झंडे लहराना महज एक तमाशा है। अहमद अली फयाज कहते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि भारत को डराने के लिए IS के झंडे लहराए जाते हैं, उन्हें कश्मीर के जमीनी हालात की जानकारी नहीं है। वटाली कहते हैं कि IS का झंडा लहराने का मतलब सुरक्षा बलों को डराना भी होता है।
जब पथराव होता है तो गुस्से में आके ये उठाते हैं ये झंडा भी, तो इसको दिखाते हैं ये भी कर सकते हैं, हम लड़ सकते हैं।
पुलिस के DG दिलबाग सिंह ने हाल ही में श्रीनगर में एक प्रेस सम्मेलन में बताया कि कश्मीर में IS की कोई बड़ी मौजूदगी नहीं है। कश्मीर में झंडे लहराने का एक लंबा इतिहास रहा है और उस इतिहास में जुड़े काले रंग के झंडे एक नई कड़ी है। माजिद जहांगीर, BBC श्रीनगर।
माजिद जहांगीर की रिपोर्ट पर आपकी राय का हमें रहेगा इंतजार। और हम आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने कल भारत को सिडनी में खेले गए एक वनडे मुकाबले में 34 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 289 रन की चुनौती दी थी, लेकिन भारतीय टीम 9 विकेट पर 254 रन ही बना सकी। रोहित शर्मा ने शतक बनाया, लेकिन वो टीम को जीत नहीं दिला सके। अगला मैच 15 जनवरी को एडिलेड में खेला जाएगा। और एक खबर हम आपको बता दें जो bbchindi.com की वेबसाइट पर लगी हुई है। एक अमेरिका की सांसद हैं, हिंदू सांसद, वो अगला राष्ट्रपति बनना चाहती हैं। कौन है वो सांसद, अगर आप जानना चाहते हैं तो आए bbchindi.com पर। और अब चलते चलते मुख्य समाचार विकास त्रिवेदी से।
BBC समाचार। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने मंगलवार को ब्रेग्जिट के मुद्दे पर समर्थन को लेकर सांसदों को आगाह किया है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामापूसा ने देश में बलात्कार और यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ पुरुषों से एकजुट होने की अपील की है। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी में उभरते सितारे के तौर पर देखे जाने वाले जूलियन कास्त्रो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारी के लिए दावेदारी पेश करेंगे। 44 साल के जूलियन टेक्सास में सेंट एंटोनियो के मेयर रह चुके हैं। फ्रांस की सरकार का कहना है कि शनिवार को हुए प्रदर्शनों में करीब 84,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इससे पहले हुए प्रदर्शन में ये संख्या 50,000 थी। कांगो में राष्ट्रपति पद के चुनावों में विपक्ष के उम्मीदवार मार्टिन फायुलू ने BBC से कहा है कि चुनावों में धांधली हुई है और वो चुनावी नतीजों के खिलाफ अदालत का रुख करेंगे। सऊदी अरब की 18 साल की युवती रहफ कनाडा पहुंच गई हैं। इस्लाम और अपने परिवार को छोड़ने की वजह से वो चर्चा में आई थी। BBC समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे दीपक जसरोटिया। शाम के वक्त 7:30 बजे दिन भर में होगी आपसे अगली मुलाकात। तब तक देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए bbchindi.com के साथ। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।